हाँ जी, आज क्या विचार है?
जो जाने वाले उसके पास है,
आप बताइए, आप किस किस्म में बुढ़े हो? हम बुढ़े हो यार।
हाँ दीपक जी, आप तो एक साल बाद आए ना?
नहीं सर, मैं अक्टूबर में
आए थे ना।
अच्छा अच्छा, मेरे पास है, मैंने कहा जो जाने वाले हैं, हाँ अगर पहले कुछ मतलब चाहते हैं तो उनको पहले मौका देना चाहिए।
कोई किस्सा ऐसे
नहीं, आप एक आरती में लाइन आती है जी,
हाँ जी,
काया अंतर प्रत्यक्ष शुभ नाद रूप विस्मार, पर एक्चुअली तो मीनिंग तो इसी का चाहिए, बाकी पल पल की जो आज की कन्वेंट करेगा।
देखो, काया अंदर प्रत्यक्ष होवे नाद रूप विस्मार, यही तो जीव ईश्वर से चाहता है और क्या चाहता है। ये जो नाद रूप विस्माद है, ये वास्तव में जो निराकार ईश्वर सत्ता है उसका प्रकट रूप है, वो रूप जिसको जीव अनुभव कर सकता है। ईश्वर हमारे अंदर है, जो रियल, जो कुछ भी रियल ईश्वर है वो हमारे अंदर है, मौजूद है, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। और वो ऐसा ईश्वर है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है और हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। ये एजम्पशन नहीं है, ये रियलिटी है, क्योंकि बेसिक चीज है, शरीर में जान है तो सब कुछ हो रहा है, और जान ही ईश्वर है। महाजी कहते हैं प्रेमी, जिस्म और जान का जो निर्णय है यही ईश्वर विज्ञान। तो जो जिस्म में जान है, जान ही जानती है, वही नोइंग फैकल्टी है, और कोई और की अलग सत्ता नहीं है जानने वाली, या उसकी मदद से ही ये जीव जानता है, कहने का नहीं तो कोई जान ही नहीं सकता जीव। तो जो सत्ता हर वक्त इस देह के अंदर मौजूद है और वो मेरा जीवन है, वो मेरी जान है, और फिर भी मुझे उसका कोई अनुभव नहीं। लेकिन महाजी कह रहे हैं कि प्रेमी, ये जान इस देह में इस प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार गन्ने के अंदर रस विद्यमान है, लेकिन यदि ठीक उपाय से, ठीक विधि से इस रस को गन्ने से अलग करके उसकी चीनी बनाई जा सकती है। चीनी गन्ने में के रोम रोम में मौजूद है, लेकिन यथार्थ विधि से, यथार्थ यत्न से उस गन्ने से उस चीनी को अलग करके देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार गुरु जैसा गाइड कर रहा है, क्योंकि गुरु अंतर्यामी परमेश्वर ही है जो बाहर गाइड करने प्रकट हुआ है। बाहर प्रकट होने के बाद ये नहीं है कि अंदर नहीं रहा, वो अंदर तो है ही वो, लेकिन बाहर वो प्रकट हुआ है केवल गाइड करने के लिए, तो कैसे मेरे पास तक पहुंच सकता है। तो इसलिए वाणी कह भी रही है कि सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार। वो हर पल तुझको पुकार रहा है कि तुम मेरी तरफ आ। क्यों पुकार रहा है? क्योंकि जीव का अपना जो माता, अपने जो पिता है वो वही है और कोई नहीं है। इसका इस जीव का कल्याण चाहने वाला और कोई भी नहीं है गुरु के अलावा, क्योंकि वही जानता है जीव को क्या कष्ट। इसलिए वाणी कह भी रही है कि दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। जो जीव वास्तव में दुखी होता है उसके दुख की पुकार सुनकर सदगुरु उसका मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट होता है। तो मैं दुखी हूं लेकिन अपने दुख को मैं ही नहीं जानता। इस दुख को दूर करने के लिए मैंने सांसारिक साधन सीख रखे हैं, ज्यादा पैसा कमा लूं, ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी कर लूं, ज्यादा परिवार बढ़ा लूं, मोह ममता बढ़ा के, और ये दुख दूर करना चाहता है अपना, लेकिन वास्तव में दुख बढ़ा लेता है। जैसे जैसे ये माया फैलेगी, व्यक्ति की बेचैनी, मानसिक बेचैनी, उसके कर्म बढ़ेंगे तो कर्म फल भी बढ़ेंगे, कर्म फल क्योंकि परिवर्तनशील है इसलिए बेचैनी उसकी बढ़ेगी। बस सीधी सी बात है। लेकिन जीव के इस निश्चय को कौन बदले? कौन बदले? जिसमें जीव अपना कल्याण देख रहा है उसके निश्चय को संसार तो नहीं बदल सकता, क्योंकि संसार उसी में कल्याण देख रहा है जिसमें मैं देख रहा हूं। सारा संसार उसी में कल्याण देख रहा है जिसमें मैं देख रहा हूं, इसलिए ये तो मुझे गाइड कर ही नहीं सकता। संसार में यदि गाइडेंस मिलेगी तो वही मेथड्स की मिलेगी जिस मेथड्स में को वो जानते हैं और जिसमें वो अपना कल्याण देख रहे हैं। तो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़े से बड़ा जो है वो फिलोसोफर हो, बड़े से बड़ा आपका जो है वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो या बड़े से बड़ा सेठ हो, सबकी कल्पना एक ही है कि संसारिक सुख से मेरे जीवन में चैन आ जाएगा। जबकि सत्पुरुषों का निर्णय दूसरा ही है कि नानक दुखिया कुल संसार। तो जब तक हम इस बात को सीखेंगे ही नहीं कि वो किस करके दुख रूप कह रहे हैं, सारा संसार दुख रूप है, एक मेरा निश्चय ये कह रहा है कि हाँ कुछ लोग दुखी हैं, जिनके पास पैसा मटेरियल है वो सुखी, नहीं तो रेडी है। यदि ऐसा होता तो ये अरबपति खरबपति प्यासे क्यों नजर आते हैं, ये बेईमानियां संसार में करते क्यों नजर आते हैं। अब यूएसए में देखो मेडिकल लाइन में कितने लोगों पे पैसे, इस सारी वर्ल्ड में अपनी मेडिसिन बेचने के चक्कर में क्या क्या उनको ये उल्टे सीधे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या उनकी नीतियां बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट जो है वो, गरीब देश है बेचारे, खाने को दवाई को पैसे नहीं है उनके पास, उनको भी खून चूस लेते हैं। ऐसा सा प्रचार करेंगे कि लोग उनकी दवाई खरीदे और पैसा उनके पास पहुंच जाए। तो इतना सुखभोग होने के बाद भी उनको दूसरे का ना दुख दिखाई पड़ रहा है, ना अपने सुख में दुख दिखाई पड़ रहा है उनको। तो इसका मतलब यह है कि यदि हम इस दृष्टि से देखें, इस दृष्टिकोण से देखें जिस दृष्टिकोण से फकीर हमको दिखाना चाह रहे हैं, ऋषि हमको दिखाना चाह रहे हैं, तो विचार की आंख तो उन लोगों की बंद है। ये दृष्टा जो है जो सारे भोगों से उपरस है नहीं, तो वो आपको सही निगाह दे सकता है। तो गुरु की दृष्टि यदि हमने नहीं सीखी तो कभी इस निर्णय पे पहुंचेंगे नहीं कि संसार दुख रूप। इसीलिए कभी उस दिल से दिल लगा के सिमरन नहीं करेंगे जिस दिल लगा के एक भूखा आदमी जो है ना रोटी के लिए पैसा कमाता है। कैसा दिल लगा के, भूखा भूख से मर रहा सब परिवार उसका। तो वो तो जब जान जा रही है वो तो दिल लगा के पैसा कमाएगा ही। तो इतना दिल लगा के ये नाम की कमाई करता है, सिमरन की कमाई करता है, जिसका ये निर्णय हो जाता है कि नहीं संसार वास्तव में दुख रूप है, यहां मुझे चैन मिलना ही नहीं है, ये फाइनल निर्णय। इसीलिए ये सारे शास्त्रों का अध्ययन मनन बहुत जरूरी है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका निर्णय हो चुका कि संसार दुख रूप है, इसमें मुझे चैन नहीं मिल सकता, ये जो चैन दिखाई पड़ रहा है ये वास्तव में चैन नहीं है, ये इसका निर्णय समता विलास कर रही है, ये संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है परंतु अंदर से विषरूप है, देखन में ये बाग सुहाना। देखो वाणी क्या करिए, देखन में ये बाग सुहाना, जिन जिन भोगा सो अंत पछताना। इस संसार के सुख के चक्र में जो भी फंसा वो मानसिक क्लेश लेके संसार से मिला होता। अब बताइए जब तक आपका यह निर्णय नहीं होता आप गुरु की बात क्यों मानोगे, गुरु के पांच नियम आप क्यों पालन करोगे। तो यही कारण है कि हमारा हमारी सिमरन में तड़प ही नहीं होती। और जिसका निर्णय हो जाता है इसी को कहते हैं जिसके अंदर विवेक आ गया, यही विवेक। जिस बुद्धि ने यह समझ लिया कि संसार दुख रूप है, इसके अंदर विवेक आ गया, उसने संसार में क्या लेना, वो संसार के लिए क्यों जिएगा। कोई इंसान तो दुख के लिए नहीं जीता, दुख प्राप्ति के लिए जिएगा कोई। उसके बुद्धि जो है वो अंध बुद्धि है, अज्ञान बुद्धि है, इसलिए वो जहां से दुख मिलने वाला है, जहां से बेचैनी मिलने वाली है, वहां वो चैन की तलाश कर रहा है, गलत फहमी में फंसा हुआ है, इसलिए वो संसार में एफर्ट कर रहा है, इधर टालता चला जा रहा है। जहां संसार कमाएगा सिमरन छोड़ देगा, एकांतवास छोड़ देगा, सबसे पहले इसी को छोड़ने तैयार बैठा हुआ है। ये नहीं देता गुरु ने कितने कितने बड़े सेक्रीफाइस किए इस काम के लिए, जो भी इस मार्ग पर चले उन्होंने कितने कितने बड़े सेक्रीफाइस किए, और मैं जरा जरा सी बातों में फंसल जाता हूं। मोहमंता मुझे पकड़ लेती है। तो इसीलिए जब तक आपका ये निर्णय नहीं होता तब तक ये आपकी प्रार्थना कौन सुनेगा, है नहीं? कि अंदर प्रत्यक्ष हो नाद रूप स्मार कौन सुनेगा,
काया अंतर प्रत्यक्ष,
अंदर जो है
अच्छा
प्रत्यक्ष हो, वो प्रकट हो, प्रत्यक्ष मतलब प्रकट हो जाए नाद रूप स्मार, ईश्वर मेरे अंदर प्रकट हो जाए, ये कौन प्रार्थना कर सकता है? ऐसे जो आरती पढ़ के तो प्रार्थना सभी कर लेते हैं, लेकिन प्रार्थना थोड़ा ना है। प्रार्थना तो जब होती है जब टूटे हृदय से, संसार से दिल टूट जाए, प्रार्थना तो वही करेगा। ये प्रार्थना तो ऐसी है कि संसार की मौज मस्ती आ रही है, कुछ कमी है, अंदर नाद प्रकट हो गया तो अंदर का आनंद भी मुझे मिल जाएगा, नहीं? ये तो मिलते ही रहेंगे, अंदर का भी आनंद मिल जाएगा। लोगों की प्रार्थना तो इसलिए होती है, उनकी प्रार्थना कौन ईश्वर सुनेगा उनकी प्रार्थना, उसको पता है ये कैसी प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना तो ईश्वर से केवल वही कर सकता है जिसका दिल संसार से टूट गया, ये तो प्रार्थना कर ही, जीव ये प्रार्थना कर ही नहीं सकता, केवल मुंह से कुछ शब्द उच्चारण कर सकता है, बस प्रार्थना निकलेगी नहीं। तो ऐसा जीव जो है जिसके अंदर विवेक आ गया है उसके अंदर वैराग्य आएगा ही आएगा, ये विवेक और वैराग्य साथ रहते हैं, विवेक और वैराग्य साथ रहते हैं। तो ये विवेक वैराग्य जिसके अंदर है वो महाराज जी कहते हैं प्रेमी सही अभ्यास वो करता है। संतरा से पढ़िए आप, सब में सब लिखवा मिल जाएगा, सही अभ्यास वो कर पाता है जिसके अंदर विवेक वैराग्य अंदर है। ऐसा अभ्यास करने वाला, ऐसा सिमरन करने वाला दिल से प्रार्थना करता है तो उसके अंदर वो प्रकट होता है, ईश्वर को दिखता था ना, वो तो प्रतीक्षा ही कर रहा है उस दिन की कि तेरे अंदर ये कब आए, कब मैं अपना स्वरूप प्रकट करूं ताकि तू मेरे स्वरूप से जुड़ जाए। तो जब ये अंदर प्रकट होता है तो बाहर जो नाम जाप करते तो वो छूट जाता है, ये उसका वो रूप है, अभी उसका फाइनल रूप नहीं है। वो फाइनल रूप तो जीव अनुभव कर ही नहीं सकता क्योंकि वो अद्वैत अवस्था है, अद्वैत में मीन्स अकेला वही रहता है, दो नहीं हो सकते वहां पर, तो इसलिए उसका नाम ही महाजी ने आत्मलीनता ही रखा है। जहां जीव सत्ता लीन हो जाती है, या यूं कहिए कि मन जहां लीन हो जाए, मन की सत्ता जहां खत्म हो जाए या भस्म हो जाए, वहां ईश्वर की प्रेजेंस है। ऐसा जीव ही गुरु बनने का अधिकारी है, ना वहां कर्तापन है ना वहां कोई किसी प्रकार का अहंकार या वासना है। तो अब बताइए कि इस प्रकार की प्रार्थना मैं करना चाहता हूं और चाहता हूं ये प्रार्थना मेरी सुनी है तो उसकी तैयारी की, उसकी तैयारी तो हम नहीं करनी होगी ना। तो प्रार्थना करने लायक बने पहले हम, तभी तो प्रार्थना सुनी जाएगी। तो इसीलिए सिमरन तो लोग कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन सही सिमरन कौन कर पाता है? सही सिमरन केवल उसका बन पाएगा जिसके अंदर ये विवेक आ गया है और इस विवेक के प्रकाश में उसका दिल संसार से टूट गया है। इसलिए संसार में कुछ करता करना ही चाहता है ना वो, या करता ही है तो वो सबका दुख नजर आता है और उनका दुख दूर करने का प्रयास करता है। खुद तो जानता है मेरा दुख संसार में दूर नहीं हो सकता, खुद तो वो जानता है। जो दुख सुख शारीरिक शरीर करते हैं वो प्रार्थना अनुसार आएंगे जाएंगे, तो संसार में यदि उसका कुछ क्रियाकलाप रहता है तो लोगों के सेवा करना ही होगा, वो निष्काम रूप में कुछ स्वार्थ तो पूरा करता ही नहीं, इसमें स्वार्थ के लिए सेवा नहीं करता किसी की। तो परिवार परिवार के बाहर भी वो नहीं, उसका दृष्टि बदल जाती है, वो दुख दूर करने का प्रयास करता है। और वो भी अंदर से निश्चय होता है कि दूर दूर करने वाले तो प्रभु ही हैं, प्रारब्ध के अनुसार इनका दुख आएंगे इनके जीवन में और दुख इनके जाएंगे, परिस्थितियां इनकी आएंगी, परिस्थितियां जो है वो जाएंगी, लेकिन बस उसका यही प्रयास होता है। जैसे मान लिया कोई रोगी है तो लोग तो मैं उसका दूर नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास 5 मिनट बैठ जाऊं मैं और प्रेम से उसका हालचाल पूछूं उससे, तो उसको एक सांत्वना मिलती है कि मेरे दुख में कोई दुखी हो रहा है, मेरा दुख दूर करने की वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, या नहीं उसको मेरी स्थिति पर जो है वो दया आ रही है। ऐसा भाव, करुणा का भाव यदि किसी मरीज के पास कोई बैठा हो, करुणा का भाव लेकर, उसको चैन सा मिलता है, ऐसा लगता है कि आप आधा घंटा या 15 मिनट बैठे हैं तो वो अपना दुख भूल गया, थोड़ा आधा भूल गया, आधा उसको याद है, आधा वो आपके बैठने से भूल गया, चैन मिला ना उसको। कुछ नहीं कर सकते तब भी हमारी जो दया है, हमारे में जो कंपैशन है, वो दूसरे को सांत्वना देता है, धैर्य देता है, कुछ ऐसा कष्ट कम करता है। तो ये जीव जो है बस इसका रोल समाज में ये रहता है कि मेरे शरीर से किसी का कष्ट दूर हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी वो जानता है कि मेरा अपना कष्ट जो है वो तो प्रभु ही दूर करेंगे, कि संसार में कष्ट दूर हो ही नहीं सकता। और कष्ट का मतलब याद रखिए, ये मानसिक बेचैनी, देखिए हम कहीं भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कष्ट का मतलब होता है जीव की मानसिक बेचैनी जो हर वक्त बनी रहती है। भाई शरीर का रोग है अभी है चला जाएगा, लेकिन मानसिक बेचैनी आपका शरीर स्वस्थ है तब भी और रोगी है तब भी वो बनी रहती है। इस करके जो है सत्पुरुष इस एंगल से देखते हैं दुख को, नहीं तो राजा सुखी, हमारी नजरों में राजा सुखी है, लेकिन उनकी नजरों में राजा दुखी है, तो किस करके दुखी है, किस मानसिक क्लेश से राजा गुजर रहा है उनको पता है, इस बात कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कितनी सुरक्षा रखनी पड़ती है राजा को, एक सोचो जरा, नहीं राजा जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो जानते हैं, इस देश के लिए वो 24 घंटे भी जागे तब भी कम है, उसके लिए टाइम तब भी कम है, इतने काम है प्राइम मिनिस्टर के पास, तो चैन की जिंदगी जी सकता है क्या वो? जो इच्छा करके प्राइम मिनिस्टर बनता है उसका एक ईगो सेटिस्फाई होता है बस उसका एक ईगो सेटिस्फाई होता है, इसमें 5 विकार में से ईगो आता है ना, अहंकार, तो विकार है वो, तो इस विकार में बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। हम लोग काफी चैन से जी सकते, लाइफ जीते, उसको कहां फुर्सत है, ना परिवार देखने की फुर्सत है, ना अपने लिए फुर्सत, इतने निर्णय लेने हैं, इतने लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं उससे मिलने के लिए, डिसीजन लेने के लिए फैसले लाइन में लगी हैं, कहां फुर्सत है उसको। लेकिन दुनिया तो ये देखती है, अरे प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर का जीवन देती, क्या नाम है इसका, क्या मौज आ रही है इसकी, है नहीं, सारी दुनिया उसके पैर छू रही है, कहीं जो मन चाहे आप सोच रहे हैं, जो मुंह से कहता है वो फट से हो जाता है, इसमें सुख सुख तलाश कर रहे हैं लोग, जिनको नहीं मिला वो इसमें सुख देख रहे हैं। लेकिन विचार की आप एंगल से देखो कि ऐसा जीव क्या सुखी हो सकता है जिसपे इतना वर्क का प्रेशर हो, इतना इतनी बड़ी इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप यही कहोगे बिल्कुल नहीं, चैन तो जीवन में हो नहीं सकता उसका, फिर क्यों वहां पहुंचने की कोशिश करता है अभी तो अज्ञानता में बात यही है अल्टीमेटली, जो भी बड़ा बन संसार में बड़ा बनने की कोशिश करता है किसी भी एंगल से, अज्ञानता, विवेक नहीं उसके अंदर। तो विवेक यदि जब आएगा आपके अंदर, तो विवेक इसी का नाम है कि ये संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है परंतु अंदर से विषरूप है। समता विलास में ये जो निर्णय महाराज जी ने लिखा, और वाणी भी तो इसकी प्रकट हुई थी, वाणी में भी निर्णय आया कि देखन में ये बाग सुहाना, जिन जिन भोगा सो अंत पछताना। अरे विष जो उसको मिठाई समझ के खा जाए कोई, मिठाई में विष मिला हो तो अंदर से जलेगा ना जलेगा तो? तो जिसने उस मिठाई का भोग किया तो पछताएगा, अरे मैंने जहर खा लिया। तो संसार को भी सुखरूप समझ के जिसने ज्यादा भोगने की कोशिश की इसको पछताएगा, क्योंकि मानसी बेचैनी बढ़ जाएगी। तो इसलिए होश में गुरु आपको होश में लाता है। इसलिए महाजी सबसे पहले सादगी का सूत्र दे रहे हैं, ये भोग वृत्ति को हटा, काम चलाने वाली बात कर, मर्यादा का जीवन। एक वर्ड और यूज करिया मैंने, सादगी कह ले या मर्यादा का जीवन कह ले, बात एक ही। ये मनुष्य योनि कामना पूर्ति के लिए नहीं है, आवश्यकता पूर्ति के लिए, देह की आवश्यकताएं हैं पूर्ति के लिए कर्म कर लिए। लेकिन असली काम जो है, इसको सुख आप समझ रहे हो, उसको सत्पुरुष उसको नाम दे रहे हैं आनंद का, उसको नाम दे रहे हैं वो शांति का, उसको नाम दे रहे हैं वो संतोष का। तो आनंद, चैन, संतोष, तो ये जो चीजें हैं इसका संबंध संसार से नहीं है, इसका संबंध करतार से। इसलिए आदमी को चाहिए यही, लेकिन है ही नहीं संसार में जो चीज, कहां से मिल जाएगी? इसका संबंध ईश्वर के साथ है और ईश्वर तेरे अंदर है, इसलिए उसको आनंद का सागर कहते हैं। नहीं कहते आनंद का सागर? तो अब बताइए मुझे, उसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं? कहते हैं, नहीं कहते? मैं कहते हैं परम तृप्ति, इस ईश्वर की प्राप्ति में परम तृप्ति है। तो वो परम तृप्ति ईश्वर में है, उस तृप्ति की तलाश हम संसार में कर रहे हैं जहां है नहीं। संसार तो कहते प्रेमी सुख और दुख है, और सुख दुख द्वंद रूप है। द्वंद कहते ही उसलिए हैं उसको, हैं दो पोल्स हैं, अपोजिट पोल्स, एक दूसरे को नष्ट भी कर रहा है, एक दूसरे का निर्माण भी कर रहा है, इंटरडिपेंडेंट है दोनों। मतलब सुख से दुख पैदा भी हो रहा है नहीं, और दुख से सुख फिर बदल रहा है, साइकिल चल रही है। तो तू एक स्थिति चाहता है इसमें से, सुख है ही नहीं मिलेगा। इसी दो संस्कृत के जो वर्ड्स हैं जिनकी जो ऋषियों ने लिखे हैं ऐसे नहीं है उनका, उनका जो मीनिंग यदि देखो तो पता लगता है ये वर्ड क्या बोल रहा है। डिक्शनरी मीनिंग से ये समझ नहीं आती है, ये शास्त्र कभी भी डिक्शनरी मीनिंग से कब समझ नहीं आई। तो द्वंद का मतलब ही यही है कि एक दूसरे का जो नष्ट भी कर रहा है, एक दूसरे का निर्माण भी कर रहा है। इसका मतलब ये एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, हर चीज यहां एवर चेंजिंग है, तू इसमें स्थिरता चाहता है। कैसे मिलेगा सुख की स्थिरता ही तो चाहता है, तो सुख बना रहे जो चीज है ही नहीं वहां कहा क्या मिलेगी। तो महाजी की वाणी कह रही है कि मंगत साचा सो प्रभु मेरा, जो वाद घाट ना पाए। सच्चा प्रभु है जिसमें ये चीज नहीं है, वृद्धि और ह्रास उसमें नहीं है, वो समता है, वो समरूप है, समझे? उसमें विषमता नहीं है, द्वंद में विषमता है, इसीलिए उसको पॉइजन कहा गया, विषा। संसार का जो भी जीव इस संसार को सत्य समझकर, सत का मतलब यही हो गया कि इसको सुख रूप समझकर, इसमें सुख की तलाश करेगा वो दुखी होता है। तो गुरु आपने केवल इसलिए बनाया था कि ये गुरु की बात आप सीख लो, क्योंकि इसके बाद ही आप कुछ करोगे क्योंकि आप ईश्वर की खोज क्यों करोगे बताओ मुझे? गुरु कह रहे ऐसे करोगे आप? ईश्वर की खोज इसीलिए करोगे कि आपने गुरु से ये बात सीख ली कि संसार में कुछ भी क्यों ना कर लूं, मेरी जिंदगी बर्बाद ही होनी है, सुख मुझे कभी नहीं मिलना। सुख का मतलब जीवन में संतोष कभी नहीं होना। तब आप गुरु के कहने के अनुसार ईश्वर की खोज में लगते हो, संसार छोड़ सकते नहीं, क्योंकि माल कहते हैं देह ही संसार है, छोड़ दोगे। और प्रभु ने आपका प्रारब्ध निर्धारित कर दिया है, इस देह जो आई है, देह प्रारब्ध लेकर आई है, प्रारब्ध का प्रोग्राम लेकर आई है, इसलिए जो कार्य इस देह से होने हैं वो होंगे, करने पड़ेंगे आपको। तो सब कुछ करते हुए, हर परिस्थिति में रहते हुए आपने ईश्वर की खोज करनी है, तो इसका मतलब ईश्वर की खोज करने के लिए आप स्वतंत्र हो, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। अंदर यहां पर है ना, इसीलिए वेद व्यास ने परिभाषा करी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं, उसको पुरुष प्रयत्न कहते हैं, और मैं जो सांसारिक कर्म है इसको पुरुषार्थ कह रहा हूं, ये पुरुषार्थ है ही, वो प्रारंभ है।
ईश्वर प्राप्ति में प्रारंभ कहीं से
नहीं, बिल्कुल
इन्वॉल्व नहीं होता,
नहीं होता, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति मानसिक कर्म है। सिमरन तन से करते हो या मन से करते हो? मानसिक कर्म, मानसिक कर्म प्रारब्ध नहीं होता, जो देह से कर्म होते हैं वो प्रारब्ध होता है। तो इसीलिए जीव संसार में रहते हुए संसारिक कर्म करते हुए वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अब यहां आके महर्षि रमण की बात आपको समझ आए, अब समझ में आ जाएगी। महर्षि रमण गुफा में बैठे हुए हैं अरुणाचल हिल पे, एक गृहस्थी व्यक्ति उनके पास आता है, कहता है महर्षि मेरा ईश्वर भक्ति करने को मन करता है, तो मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो महर्षि रमण कहते हैं कि ईश्वर भक्ति तो घर में रहकर भी हो सकती है, संन्यास लेके क्या करोगे? तो वो काउंटर क्वेश्चन करता है महर्षि से, महर्षि आपने भी तो संन्यास लिया। तो महर्षि कहते हैं मैंने संन्यास लिया नहीं, ये मेरा प्रारब्ध था, क्योंकि संत तो त्रिकालदर्शी होता है। वो कहते हैं तेरा प्रारब्ध यह है तो घर में रहेगा, तो कितनी कोशिश कर ले संन्यास ले ही नहीं सकता। तो इसका मतलब गुरु की बात हमने पूरी ठीक से समझी नहीं, इसलिए ऐसी बातें करता है। यदि ठीक समझ लेते तो जहां है जिस हालत में है वहां मैं ये काम कर सकता। मन से आपको बीबी की याद आ रही है, या घर बैठे हुए ऑफिस की चिंता हो रही है, अरे भी ऑफिस का काम करिया है, चिंता करने से कुछ होने वाला है? ईश्वर की चिंता कर सकते हो वहां, लेकिन क्योंकि आसक्ति पैसे में है, आसक्ति स्वार्थ कर्म में है, इसलिए ऑफिस की चिंता हो रही है। नींद भी नहीं आ रही है चिंता के मारे, बस आपका कुछ नहीं चल रहा है। ये क्या स्थिति है भाई, ये क्या स्थिति? कुछ कर रहे हो तो बात समझ में आती थी, कर कुछ रहे नहीं हो, अपनी नींद भी डिस्टर्ब कर रहा हो, क्या कर रहा हो ये? लेकिन ऑटोमेटिक हो रहा है। तो सत्पुरुष कहते हैं तेरे अंदर विवेक होता है तो ईश्वर की चिंता करता, ईश्वर की याद करता। अविवेक के कारण, अंधबुद्धि होने के कारण, अज्ञानी होने के कारण तू जो काम नहीं कर रहा उसके बारे में भी सोचे पड़ा हुआ, वक्त बर्बाद कर रहा और दुख खरीद रहा, बेचैनी तो पैदा होती ना आपके अंदर। तो कैसी स्थिति हमारी सोच रहा, केवल अज्ञानता का। तो जब ये विज्ञान आपको, इसके लिए मेहनत की हो आपने यदि, तो ऐसे तो समझ नहीं आएगा केवल सुन लिया किसी के कहने से निर्णय, ऐसे नहीं होता। जब तक खुद मेहनत नहीं की है, खुद आपने गहरा चिंतन नहीं किया है, खुद उस पर गहरा मनन नहीं किया है, तब तक आप इस निर्णय पर पहुंचोगे नहीं। केवल एक बार पढ़ने से निर्णय नहीं बदलता आदमी, सैकड़ों बार ये बात हम सत्संग में सुन चुके होंगे, निर्णय बदल गया क्या? तो ये गहरा मनन करना पड़ता है, इसको कहते हैं सत्विचार। ये है शास्त्रों के निर्णय पर गहरा मनन करना, गहरा चिंतन करना, इसका नाम है सत्विचार। ऐसे होता है सत्विचार। सत्विचार किसी से सुन लिए तो सत्विचार नहीं होता। जब गहरा मनन करते हो तब आपका रोम रोम कहता है गलती कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, सही रास्ता ये है। अरे हरे इंसान अपने कल्याण के लिए जी रहा है, कैसे नहीं जिएगा सही रास्ते पर चलकर? जरूर जिएगा, क्योंकि उसका सत्विचार ही नहीं करता। कहीं से सुन लिया, एक वहम और पा लिया, मैं सत्संग हफ्ते में एक बार सुन आता हूं, बस हो गए, उससे क्या हो जाएगा। इसलिए देखा होगा आपने 20-20 साल लोग सत्संग सुन रहते हैं, जिंदगी वैसी चलती रहती है। हो सकता है दो चार झूठ कम कर दिए उन्होंने, हो सकता है रिश्वत लेना कम कर दियो, ये ऐसी माइनर चेंजेस तो आ जाती हैं, लेकिन इस मार्ग को लक्ष्य बनाना और लक्ष्य निर्धारित करके गंभीरता से चलना, ये बिना सत्विचार के नहीं हो सकता, ये बिना सत्विचार के नहीं हो सकता। तो जब बुद्धि इस प्रकार सत्विचार करके इस निर्णय पर पहुंचती है, ऐसी बुद्धि फिर सिमरन में गंभीर होती है। ऐसा व्यक्ति जब महामन का सिमरन करेगा ना, तो फिर शिकायत नहीं करेगा कि मुझे 10 साल सिमरन करते हो गए, मेरा कुछ बना नहीं, शिकायत नहीं करेगा, प्रभु तो पकड़ेंगे अंदर से उसको, तो उसका संसार में काम ही क्या रह गया, सोचो जरा। इसका संसार में काम तो करेगा, प्रादर्श प्रभु ने प्राद दिया ना, तो काम तो करना पड़ेगा उसको, लेकिन उसका दिल उसमें नहीं होगा, दिल नहीं लगेगा, वासना पूर्ति के लिए नहीं करेगा। इसी को कहते हैं कर्तव्य प्राण होकर जीना। संसार में जो कर्तव्य प्राणता करके कहते नहीं कहते, तो प्रभु ने कर्तव्य कर्म दिया है, मैं कर देता हूं, उसका फल से वास्ता नहीं होता, उसमें आसक्ति नहीं होती। वो इस गीता के सूत्र को अपना रहा है कि कर्म मरने बाद का रस्ते मां फलेशु कदाचन। कर्म में तो अधिकार है प्रारब्ध के कारण, कर्म में अधिकार दिया है, इसका मतलब क्या है, क्यों अधिकार है, क्योंकि वो तेरा प्रारब्ध है, फल में कदापि नहीं। ध्रुव प्रभान कृष्ण कहते हम फल के लिए तो जी रहे हैं, अरे सुख दुख फल में ही तो है, और गीता का प्रारंभ यहां सेकंड दूसरे अध्याय में तो है। तो गीता कहां से प्रारंभ हो रही है, यहीं से प्रारंभ हो रही है कि फल में करा तू, तूने फल में आसक्ति नहीं रखनी, क्योंकि तूने फल के लिए नहीं जीना, तूने ईश्वर के लिए जीना है। तो गीता इसीलिए पढ़ रहा है कि तूने ईश्वर के लिए जीना है, नहीं तो गीता किस लिए लिखी गई है। अरे गीता केवल उसके लिए लिखी गई है जिसने ईश्वर प्राप्ति के लिए जीना है, बस इसी बात। भगवान कृष्ण ने ये गीता ज्ञान अर्जुन को इस वास्ते नहीं दिया था कि अर्जुन युद्ध जीत जाएगा, उसने गीता ज्ञान इसलिए दिया था कि अर्जुन जो मन के युद्ध से परेशान है, सुख दुख से, सफलता विफलता से, कर्म फल में परेशान है, इससे ये मुक्त हो जाएगा, इसलिए गीता ज्ञान दिया था। इस उद्देश्य को सामने रखकर गीता पढ़ो तो पता लग जाएगा कि गीता क्या कह रही है, क्योंकि भोगवाद के बारे में तो निर्णय साफ कर दिया कि रज सहा तू फलम दुखम। सुख के लिए तो रजोगुण तो सुखी तो है, इंद्रियों के सुख को ही तो रजोगुण कहते हैं, जो इंद्रियों के सुख भोगने की लालसा से जीता है वो रजोगुण ही है, उसका परिणाम गीता कह रही है कि रज सहा तू फलम दुखम, इस रजोगुण का परिणाम दुख है। तो फिर भैया ईश्वर की तरफ कृष्ण की पूजा काहे कर लो, क्या मिलने वाला है। तो आप बताओ जो कृष्ण की लीलाओं में मस्त हैं, क्या मिलना है, वो तो इंद्रियों का मनोरंजन हो रहा है, कृष्ण की लीलाएं हैं जो कर रहे हैं या देख रहे हैं तो इंद्रियों का मनोरंजन हो रहा है ना, मन लग रहा है, मन तो लगता है ना, इंद्रियों मन सीरियल देखते उसमें मन लग जाता, तो मन लगने से भक्ति थोड़ा जाती है, निष्कामता में मन लगेगा, निष्कामता होती है ईश्वर भक्ति में, ईश्वर सिमरन में, क्योंकि वहां तो इंद्रियों भोग कोई भी नहीं मिलता। तो अंतर्यामी ईश्वर की याद में जिसका मन रमेगा नहीं, वो इंद्रियों से ऊपर का रस है। फिर अब देह स्थिर करके बैठ गए आप, अब इंद्रिय तो एक्टिव नहीं है, वहां मन एक्टिव है, इस मन से आप ईश्वर की याद कर लो तो मन पे असर होगा या नहीं होगा उसका। तो इसीलिए महा जी कहते प्रेमी, सिद्ध मंत्र के जाप से जन्म जन्मांतर के संस्कार भस्म हो जाते हैं, मेंटल इंप्रेशन है हमारे अंदर जिसके कारण हमारे अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं वो खत्म हो जाते, धीरे धीरे वॉश आउट हो जाते। तो इसीलिए यदि आप इस स्पिरिट से महामंत्र जाप करें कि मेरे सारे दुखों को ये जन्म जन्मांतर के क्लेशों को ये से मुझे मुक्त कर देगा और अंतर्यामी ईश्वर का दर्शन कराएगा, क्योंकि ईश्वर जिस प्रकार अंदर मैं प्रार्थना कर रहा हूं नाद रूप में प्रकट हो, अरे वही ईश्वर ये मंत्र रूप में प्रकट हुआ है, ये तो मैं स्मरण किसका करूं, कौन से नाम के जाप से मेरे ये संस्कार भस्म होंगे। तो सिद्ध मंत्र के जाप से संस्कार भस्म होते हैं, पहले संस्कार भस्म होंगे तभी तो मन की सफाई होगी। तो मलिन मन से कैसे प्रार्थना करोगे आप, निर्मल मन से प्रार्थना होगी ना। तो इसीलिए पहली कृपा तो तेरे पर हो चुकी है, जिसको तू कृपा मान ही नहीं रहा है, सिद्ध मंत्र का तुमको पता लग गया है। वो सिद्ध मंत्र उसी प्रकार ईश्वर का अवतार है जिस प्रकार नाद ईश्वर का अवतार है अंदर, जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है। तो इसीलिए उस मंत्र के जाप में कोई लापरवाही करना या उसको ईश्वर के अवतार से कम समझना, ये अज्ञानता है। तो वो भाव हो विवेक और वैराग्य वाला, अर्थात वो विचार हमारे अंदर घर कर जाए, हमारी बुद्धि का निर्णय ये हो जाए, इस निर्णय के साथ जब ऐसे सिद्ध मंत्र का जब जाप करते हो, तब एक वक्त आपके अंदर ऐसा आता है, क्योंकि ये प्रार्थना भी बिना निर्मल मन के होगी निकलेगी निवास, तब आपके अंदर एक भाव आता है कि भाई प्रभु बहुत दिन हो गए हैं, अब अंदर कृपा करो। कृपा क्यों, कहता है कि अंदर हर समय तुम्हारी याद में लगा रहूं, हर समय तुम्हारी याद अंदर बनी रहे, इसलिए वो कृपा चाहता है। तो उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, उसका वक्त आ गया, तो वही जिसने मंत्र रूप में अवतार लिया, अब वो अंदर नाद रूप में अवतार ले लेता है, खास करके नाद प्रकट जाता है या कुंडलनी प्रकट जाता है। सत्ता एक ही है, उसकी मर्जी है किसके अंदर किस रूप में प्रकट हो। उस नाद को महाराज जी ने तो शब्द भी कहा, और इस कुंडलनी को महाराज जी ने वाणी में निरत कहा, बहुत जगह निरत वर्ण आप पढ़ेंगे वाणी में, उसका मतलब होता है कुंडलनी। तो किसी के अंदर वो सत्ता नाद रूप में प्रकट होती है, किसी के अंदर कुंडलनी रूप में, लेकिन इसको कहते हैं कि अंदर का अंदर गुरु प्रकट हो गया। पहले बाहर गुरु प्रकट था मंत्र रूप में, अब अंदर गुरु प्रकट हो गया नाद या कुंडली रूप में, तो उस धारा के साथ फिर वो लगा रहता है। लेकिन जब संसार के काम में मशगूल हो जाएगा, उस धारा का अनुभव बंद हो जाएगा उसको, ये नहीं ईश्वर वेट करता रहेगा आपकी, वो धारा ही बंद हो जाएगी। लेकिन जिसकी एक वृत्ति इधर लगी रहती है, उसके लिए वो धारा चलती रहेगी, लेकिन जिसको जो पूरी तरह संसार में मतलब कि मस्त हो गया, धारा टूट जाएगी। लेकिन फिर जब बैठेगा एकांत में, फिर धारा जारी हो जाएगी। तो बात वही आ गई कि अटेंशन तो आपने देना ही देना है, फिर भी अटेंशन तो फिर भी देना है, तो बैठना फिर भी आपने, माँ जी ने बैठना बंद कर दिया क्या? तो इसीलिए आपने प्रारंभ जो गुरु कह रहा है कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायकाल सिमरन करना लाजमी है, क्योंकि जिस काम के लिए आया उसको लाजमी गुरु नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? तूने हर हालत से ये वेज एंड मीन्स तू तलाश कर, हर हालत से तूने ये वक्त तो ईश्वर की याद में देना है, इसी काम के लिए आया है संसार में मनुष्य देह धारण करके, इसको कैसे छोड़ सकता है? अब तू सोच मेरा कि मैंने प्रमोशन लेने हैं, लेने सोचा है प्रमोशन लेने से मेरा काम बढ़ जाएगा, तो क्यों ले रहा है प्रमोशन? मतलब तेरा असली काम यदि छूट जाए प्रमोशन लेने से, तो फिर तू मूर्ख है। प्रमोशन लेके असली काम को छोड़ रहा है तो मूर्ख नहीं है तू? तो इसीलिए बुद्धि का निर्णय सत विचार करके जब तक नहीं बदलेगा, आप ऐसी बेवकूफी काम करोगे और कहोगे मैं उन्नति कर रहा हूं, अपना वक्त बर्बाद कर लो। तो इसीलिए निर्णय जो आपका बदलेगा, तो एक ही निर्णय होगा कि ये संसार दुख है। इसलिए वो जो वाणी दो साफ कई जगह वाणी ने कहा है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तक से। मन की सारी बेचैनी है गोविंद का नाम हरता है, संसार से बेचैनी को बढ़ाता है। तो ये निर्णय जब आपका होता है उस समय जब सिमरन करते हो, तब कुछ काल के बाद आपके अंदर दिल में से खुद प्रार्थना उठती है, प्रभु होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, अपार धैर्य दे ताकि संसार के कष्ट को मैं सहन कर सकूं तेरे हुक्म के अंदर और सुख दुख से मैं मुक्त रह सकूं। यह है धैर्य। तो उसी के दिल से भी ये प्रार्थना निकलती है कि देह के में तो हो, नाद रूप में तो प्रकट हो, ताकि हर वक्त तेरा सुंदर बना। तो इसीलिए शास्त्रों को जैसा वो निर्णय दे रहे हैं उस निर्णय को एक्सेप्ट करने की मतलब भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इस करके शास्त्रों का अध्ययन लाजमी है, बिना उनके अध्ययन के ये विचार आप कर ही नहीं पाओगे। वो जब विचार का निर्णय सामने आएगा ना, माजी ने एक लेसन लिखा वासना विवेक, तो वासना ही तो है हमारी, ये स्वार्थ की जो इच्छा है ये वासना ही तो है। इस वासना का विवेक, इसका विश्लेषण महाजी ने लिखा, उस विश्लेषण में ही महाजी ने वासना छेदन विवेक में लिखा कि उन्होंने निर्णय दे दिया कि किस तरह ये वासना दुखदाई। तो उतना एनालिसिस पढ़ने के बाद तो सोचने के लिए मजबूर हुआ नहीं हुआ, तो उन्हीं लाइंस को पढ़ पढ़ के तू भी उसी तूने विश्लेषण करना सीख लिया वहां से, कैसे विश्लेषण करो, कैसे संसार के बारे में सोचो। वो सिस्टम सारा महाजी ने डिटेल में लिख दिया। अब गीता में तो आधी लाइन में निर्णय आ गया, कैसे निर्णय करोगे आप बताओ, कैसे सोचोगे। तो वही प्रभु जिन्होंने आधी लाइन में गीता में निर्णय दिया, उन्हीं प्रभु ने इतना विश्लेषण भी दे दिया। अब मैं उसको पढ़ने की जरूरत ही ना समझू, उसको मैं किताब की तरह पढ़ जाऊं। मैंने तो पढ़ लिया, मैंने 10 बार पढ़ चुका हूं मैं उसको ना। तब तक पढ़ने की जरूरत है जब तक तेरा एग्जैक्टली वही निर्णय ना हो जाए जो शास्त्र में लिखा हुआ है। जब निर्णय हो गया फिर पढ़ने को मिलते, जब तक निर्णय ना हो जाए बार बार पढ़ने की जरूरत है, और हर बार ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत है कि मेरा निर्णय ये क्यों नहीं हो रहा। सामने मेरी बुद्धि अभी भी वहम में पड़ी है, हिम्मत नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं है, वक्त लगता है, सत्पुरुष भी जानता है। इसीलिए बार बार एकांतवास करो, बार बार उसका शास्त्र का स्वाध्याय करो, नहीं बार बार सत्संग का श्रवण करो। तो धीरे 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 करके सोच सोच के, कुछ गुरु ने जो प्रोग्राम दिया है 5 पॉइंट प्रोग्राम, उस पर धीरे धीरे चल चल के अंतःकरण शुद्ध हो गई होगा, मन की शुद्धिकरण तो होगी ना। माई कहते हैं 5 नियम का पालन करने से बुद्धि में बल आ जाता है, वो बल यही है कि बुद्धि में विवेक आ जाता है, और विवेक के प्रकाश में बुद्धि जो है वो अभ्यास में मन लगा के लगी रहती है, काम हो जाता है। Oh.